उपस्थित महानुभाव, सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों और भाइयों, हम सब लोग साधक के जीवन पर विचार कर रहे हैं कि साधना की आवश्यक बातें समझ में आ जाती हैं, अच्छी भी लगती हैं, उनका अनुसरण भी करना हम पसंद करते हैं, फिर भी वे बातें जीवन में उतरती नहीं हैं। इस दुख से बहुत से साधक भाई बहन दुखी रहते हैं। क्या बताएं, भगवान की सत्ता को मैंने मान भी लिया और उनका भजन करना अपने को जरूरी मालूम होता है, ध्यान करना जरूरी मालूम होता है, जप करना जरूरी मालूम होता है, परंतु जब भगवान का ध्यान करने बैठते हैं तो संसार का चित्र दिखाई देने लगता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? केवल हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी अनेक साधकों से इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। यह एक बड़ा ही जोरदार प्रश्न है कि जिस बुराई को हम लोग बुराई करके जानते हैं उसको छोड़ने में देर क्यों लगी, और जिस सच्चाई को सच्चाई करके मानते हैं उसको स्वीकार करने में, उसका अनुसरण करने में देर क्यों लगी? क्यों आज तक हम लोग अपने को संसार के चिंतन में फंसा हुआ पाते हैं और परमात्मा की नित्य उपस्थिति के अनुभव से शून्य है? एक बड़े सज्जन, बड़े अच्छे साधक स्वामी जी महाराज के सत्संग में आते जाते रहते थे। महाराज जी के ब्रह्मलीन हो जाने के बाद उनसे एक बार भेंट हुई तो वे मुझसे कहने लगे कि दीदी, आप मुझे एक बात बताइए कि भगवान को हम लोग मानते ही रहे और अंत में भगवान न निकला तो क्या अर्थ है? अर्थ यह है कि भगवान को मानते हैं ऐसा आप कह रहे हैं, परंतु भगवान अपने ही भीतर विद्यमान हैं, इसका आपको कोई आभास नहीं है। उनकी विद्यमानता का आभास कुछ भी अपने को मिल गया होता तो ऐसा संदेह नहीं होता। ऐसा प्रश्न अगर अपने में उठता है तो इसका मतलब यह है कि जो सत्य है, जो नित्य है, जो सर्वत्र है, सदैव है, सभी में है, सभी का प्यारा है, सभी का अपना है, इन सारी बातों को सुनते हुए मानते हुए भी हमारा जीवन उसकी विभूतियों से शून्य है। बहुत जोरदार प्रश्न है, इसका अवश्य ही हमारे सामने निराकरण होना चाहिए। स्वामी जी महाराज ने इसके संबंध में यह सुझाव दिया कि भाई देखो, मनुष्य के व्यक्तित्व में दो पक्ष हैं। एक प्रकाश है जिसमें कि हम लोगों को सही गलत का ज्ञान होता है, क्या सही है क्या गलत है इस बात की जानकारी हम लोगों को मिलती है, और जिंदगी में एक भावात्मक गतिशीलता है, एक इस प्रकार का बल है मनुष्य के जीवन में, भाव पक्ष का, जीवन की सरसता का, कि जो सच्चाई की ओर, परमात्मा की ओर, प्रेमास्पद की ओर संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रवाहित करता है। इन दोनों को स्वामी जी महाराज ने दो शब्दों से संबोधित किया है। एक को कहा मस्तिष्क का पक्ष और एक को कहा है हृदय का पक्ष। इस विषय को मस्तिष्क के विश्लेषण में मनोविज्ञान में भी मैंने पढ़ा था, बड़ा विस्तार पढ़ा था, इसलिए मेरी समझ में आ गया श्री महाराज जी क्या कह रहे हैं। संतों की वाणी सुनकर, ग्रंथों के वाक्यों को पढ़कर बुद्धि का विकास हो जाता है, भाषाओं के शब्दार्थ हम सीखते हैं, संत महात्माओं की संगति में बैठकर उनके वचन सुनते सुनते बहुत अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे चिंतन वाले शब्दों का अर्थ भी हम लोगों की समझ में आने लगता है। इसमें ज्यादा कठिनाई नहीं होती है, ज्यादा देर भी नहीं लगती है। मस्तिष्क का विकास जो है इस रूप में जल्दी हो जाता है, फिर भी साधना में प्रगति नहीं होती है, क्योंकि सच्ची बात को सच्ची बात कहकर स्वीकार कर लेने के बाद भी उसके अनुसरण से आदमी अपने को बचाता रहता है, बुराई को बुराई जान लेने के बाद भी उसके त्याग में हम ढीलापन रखते हैं। सोचो तो सही, तुम्हें सत्य का अनुसरण भी करना है, अपने ही में जो विद्यमान है उससे अभिन्न भी होना ही है, तो बुराई का त्याग करना ही पड़ेगा, फिर भी ढीलापन है। इस प्रकार की दुर्बलता क्यों रखते हो? इस प्रकार की दुर्बलता को मिटाने का उपाय हमें करना ही पड़ेगा। उपाय क्या है? अब उपाय सुनिए। एक है विचार का पक्ष और एक है भाव का पक्ष। विचार के द्वारा पता चल जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, और भाव शक्ति में वेग होता है, उसमें तीव्रता होती है, जिससे व्यक्ति का जीवन उस सत्पथ का अनुसरण करने में बड़ी तीव्र गति से लग जाता है। अपने लोगों को विचार तथा भाव दोनों पक्षों का विकास करना होगा। अपनी वर्तमान दशा देखो, दशा ऐसी मालूम होती है कि बहुत सी अच्छी बातों को हम लोग जानते हैं, लेकिन अच्छी बातों को जान करके उसका अनुसरण नहीं कर सकते। एक सज्जन स्वामी जी महाराज के पास आए और कहने लगे, बाबा जी आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ हमें बताइए। स्वामी जी ने कहा कि मैं क्या बताऊं भाई, तुम तो मास्टर डिग्री वाले हो, 20 वर्ष मुझको पढ़ाओगे, मैं क्या बताऊं। उसने कहा, नहीं नहीं बाबा जी आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, मुझको कुछ बताइए। श्री महाराज जी ने पूछा कि भैया तुम एक बात पहले मुझे बताओ कि तुमको कुछ अच्छी बातें मालूम है कि नहीं। तो उसने कहा कि मालूम तो है स्वामी जी, मैं कुछ कुछ अच्छी बातें जानता हूँ। महाराज जी ने पूछा कि जो अच्छी बातें जानते हो उनको तुमने मान लिया क्या? वह पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति था, सच्चा आदमी था। उसने कहा, नहीं महाराज मान तो नहीं।
महाराज जी ने कहा कि यार मैं अपनी अच्छी बात क्यों सुनाऊं, जब तुम अच्छी बात जानते हो और उसको नहीं मानते हो तो मैं अपनी अच्छी बात का निरादर तुम्हारे द्वारा क्यों करवाऊं, मैं नहीं बताऊंगा। यह विनोद का विनोद है और बड़ा ठोस सत्य है। आप सभी अनुभव करते हैं कि हम लोग अपनी जानी हुई अच्छाई का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि विचार के आधार पर त्याग की भावना आपने अपने में रख लिया, फिर भी अगर हृदय ऊंचा नहीं है तो त्याग सिद्ध नहीं होता। समझ में आता है? विचार विकसित हो जाए और हृदय संकुचित रहे तो उसी हालत में यह दशा होती है जो हम लोगों की है। एक दिशा से संपत्ति आई है और समय के प्रवाह में बहती हुई निकल जा रही है, अगर उसके सामने आए हुए काल में दुखी जनों की सेवा में लगा के सदुपयोग कर डालोगे तो धन के लोभ से, उसकी आसक्ति से मुक्त हो जाओगे। दाता ने दिया था इसलिए कि तुम अपनी गंदगी की सफाई कर लो, लोभ और आसक्ति के दोष से मुक्त हो जाओ और तुम उसको लोभ की दृष्टि से देखते रहे तो देने की हिम्मत नहीं हुई और प्रकृति के विधान से वह संपत्ति निकल गई। आया हुआ मौका चला गया और मैं जैसे के तैसे संकुचित हृदय लेकर बैठी रह गई। यह घाटा हो गया। यदि सदुपयोग कर लिए होते तो जाने वाली चीज तो जाएगी जरूर, लेकिन तुमको शुद्ध करके जाती, तुमको शांत करके जाती, तुमको आनंदित करके जाती तो लाभ हो जाता। समझ में आया? अब देखिए, अब जो गंदगी है उसकी सफाई कैसे होगी बताओ? आंख बंद करने से होए कि कान बंद करने से होए कि वृक्ष के नीचे बैठने से होए कि बालू में बैठने से होए, कैसे होगी बताओ? भाई सच्ची बात यह है कि इन बाहरी बातों से भाव शुद्धि कभी नहीं हो सकती। अतः एक उपाय यह हमारे सामने आ गया कि भाई बल आवे, संपत्ति आवे, पद मिले तो जल्दी जल्दी उसका सदुपयोग करके अपने भीतर के राग को मिटा लेने का साधन हम लोग करें। उससे क्या होगा कि जब जड़ता और कठोरता निकल जाएगी तो अपनी शक्ति बढ़ जाएगी, जिससे हम हर प्रकार से हरि आश्रित होकर रह सकते हैं, हर प्रकार से शरीरों से असंग होकर रह सकते हैं। एक बार एक संत से मिलने में गई, वे मेरी उंगली पकड़कर मुझे ले गई कि चलो मैं बताती हूं तुमको। वे मुझे ले जाकर के उन्होंने एक स्थान दिखाया और कहने लगी कि देखी, जब मेरे मन में बड़ी लगन जगी थी कि मैं कैसे सत्य से अभिन्न हूं, तो देखो घर का काम करते करते भीतर भीतर मुझ में बड़ी तड़पन होती रहती थी। और जैसे ही घर का काम खत्म हुआ तो मकान के पीछे दूसरे मकान की टूटी हुई दीवार उसकी आड़ में बैठ करके मैं बस उसी चिंतन में रहती थी। मैंने और कुछ नहीं किया, न जप करना जानू, न तप करना जानू, न पढ़ी लिखी हूं। फिर भी मैं बताती हूं आप भाई बहनों को कि उनको सफलता मिली और वे सिद्ध पुरुष हो गई। उनके शिष्य लोगों ने मुझे बताया कि हम लोग जब कठिनाई में पड़ते हैं तो माता जी का दिया हुआ काले कागज का चार पन्ने का नोटबुक खोलते हैं और उसी में से हमको उत्तर मिल जाता है, उसी से हमारी समस्या हल हो जाती है। ऐसी थी वे सिद्ध पुरुष। अब मेरे दिमाग में यह चिंतन होने लगा कि इन माताजी में जैसी लगन थी वैसी लगन तो मुझ में है नहीं। मेरे व्यवहार में सभ्यता, शिष्टता, व्यवहारिकता, सामाजिकता, भौतिकता आदि की प्रधानता है। मेरे भीतर की सारी जीवनी शक्ति एकदम अपने लक्ष्य की ओर इस तरह लग जाए कि दूसरी कोई बात सूझे ही नहीं, दिखे ही नहीं, ऐसी तैयारी मेरी नहीं है। माता जी की बातों को अपने सामने रखकर मैं बार बार सोचूं। और फिर मैंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी ऐसा क्यों। मैंने महाराज जी से बातचीत की कि महाराज बताइए यह कैसे हुआ। माता जी को सब काम करते हुए भीतर ऐसी गहरी निष्ठा है, ऐसी गहरी निष्ठा है कि बस एक सेकंड के लिए अपने लक्ष्य की विस्मृति नहीं होती। चक्की चलाना, रोटी बनाना, संतों को भोजन कराना, सबकी सेवा कराना और आश्रम तो उनका ऐसा चमचमाता था कि कहीं भी एक भी मक्खी बैठी हुई दिखाई नहीं देगी। बड़ी सफाई, गाय के गोबर से सब लिपा हुआ, तुलसी के पौधे, केले के पौधे देख देख कर मैं आश्चर्यित होती रहती। इतना सब काम करते हुए भी उनको अपने लक्ष्य की विस्मृति नहीं होती थी। श्री महाराज जी ने कहा कि देखो देवकी जी, मस्तिष्क का जो विकास होता है उससे अधिक मूल्यवान है हृदय का विकास। हृदय अधिक मूल्यवान है और सभी साधकों को हृदयशीलता को बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अधिक पढ़ना लिखना करो, शास्त्रों के अध्ययन की उपाधियां ले लो। उसका अगर अपने में आभास बन गया कि दूसरे अन्य मामूली साधकों से मैं विशेष हूं, तो इस अपनी विशेषता के आधार पर अहम के पोषण में हृदयशीलता दब जाती है। हृदय का प्रवाह जो है वह अभिमान से दब गया। और माता जी का जीवन देखो, अभिमान की गंध नहीं है, उनके हृदय में बड़ी करुणा है। जिन साधकों में गुणों के आभास से हृदय की जड़ता और कठोरता बढ़ जाती है उनका विकास नहीं होता। गुणों के आभास ने अहम शून्यता में भगवत समर्पण को सजीव नहीं होने दिया। अतः हृदय का विकास जो है वह अहम के अभिमान से रुक जाता है। माता जी के हृदय में इतनी करुणा, इतना स्नेह है कि एक बार एक गौ को बच्चा हुआ और वह गौ माता मर गई। छोटा बच्चा उसका मां मां करके चिल्लाई तो माता जी के हृदय में इतनी करुणा उपजी कि उनके स्तन से दूध बहने लगा। बुद्धिमत्ता के मुकाबले में यह करुणा, यह सहृदयता बहुत ऊंची है। समझ में आता है? सोच लो, सचमुच जो भोले भाले लोग होते हैं, हृदयशील लोग होते हैं, जो दूसरे का दुख देखकर द्रवित हो जाते हैं, उनका विकास जल्दी होता है। उनकी मानसिक योग्यता, प्रतिभा कितनी है, इस पर विचार करने की बात नहीं होती। उनके जीवन में इतना फोर्स होता है, हृदय के रस से वे इतने गतिशील हो सकते हैं कि सच्ची बात उनके सामने आई तो उस सच्चाई को एकदम पकड़कर चल देते हैं। और अपने लोगों की दशा देखो, सच्चाई की बात सोचते सोचते इतने दिन बीत गए। ईश्वर विश्वास के आधार पर अपने को भक्तों की श्रेणी में शामिल करने की अभिलाषा लेकर कितनी प्रकार की बातें हम लोगों के जीवन में चल रही हैं। और आंख बंद करके, शांत होकर के अकेले कुछ देर के लिए बैठो तो देखो, थोड़ी देर भी संसार के चिंतन से फ्री होकर के बैठने की क्षमता अपने को मिली कि नहीं मिली। सब कुछ करते कराते भी शरीर और संसार का सहारा छोड़कर अपने आप में चुपचाप शांत रहने की क्षमता आई कि नहीं आई। अपनी दशा अपने सामने रखकर सोचो तो यह उत्तर आता है कि सत्संग सुनते हुए भी, तीर्थों में वास करते हुए भी, अनेक प्रकार के नियमों का पालन करते हुए भी, शरीर और संसार का चिंतन छोड़कर शांत रहने नहीं आया। ऐसा क्यों भाई, क्यों नहीं आया शांत रहने? क्योंकि जीवन में रस की वृद्धि नहीं हुई। अब इसके आगे का कदम देख लीजिए, अब आगे और चलें। आगे क्या है कि जिन साधकों के जीवन में अपने सुख पर दृष्टि कम रही और परहित पर दृष्टि अधिक रही, वे पार पा गए। जिन साधकों के जीवन में हृदय की सरसता अधिक रही, वे विचार मार्ग के साधक होने पर भी विचार पूर्वक त्याज्य का त्याग करने में सफल हो गए। निश्चय किया कि यह छोड़ने के लायक है तो छोड़ दिया तत्काल, देर नहीं लगी। ऐसी शक्ति उनमें कहां से आई? उनकी जीवनी शक्ति जो थी वह स्वार्थपरता के दोष से कुंठित नहीं थी, इसलिए वे पार पा गए। ईश्वर विश्वास के साधकों ने, जिन्होंने प्रभु को अपना माना, उनको अपना आत्मीय कहकर स्वीकार किया, तो इस स्वीकृति के फल स्वरूप दूसरे सारे संबंध उनके तत्काल ही ढीले हो गए, छूट गए। श्री महाराज जी के संबंध में हम लोगों ने सुना है कि संत ने सलाह दी कि भैया ईश्वर के शरणागत हो जाओ। स्वामी जी महाराज ने प्रभु की शरणागति को स्वीकार किया। बड़ा भारी परिवर्तन उसी समय 11 वर्ष की उम्र में उनके जीवन में आ गया। सवेरे सवेरे उठने पर उनको स्नान वगैरह करा दिया जाता, माँ कपड़े पहना देती, कुछ खिला पिला दिया जाता। हाथ में एक छोटी सी छड़ी लेकर अकेले ही टटोलते टटोलते घर से निकल जाते। पता ही नहीं चलता, किसी को बताते ही नहीं, किसी को संग में लेते भी नहीं। और एकदम गांव के बाहर बगीचे में एक पुलिया की नहर के ऊपर जा करके बैठ जाते और सारा दिन वहां बैठकर बिता देते। शाम होने पर ऐसे ही टटोलते टटोलते घर आते। उनको देख करके ऐसा लगता कि जैसे संसार में किसी से कोई नाता नहीं है। स्वामी जी ने हम लोगों को बताया कि जब संत ने मुझे सलाह दी कि प्रभु के शरणागत हो जाओ, तो देवकी जी पता नहीं उस संत की वाणी में क्या जादू था। मैंने उनकी बात को स्वीकार किया तो उसके बाद ऐसी धुन लग गई कि जिसकी शरण मैंने ली है, जो मेरा शरण्य है, उससे मुझको तत्काल मिलना ही चाहिए। एक बड़ी ही तीव्र लगन लग गई जिंदगी में। ग्रंथ पढ़ा थोड़े, कीर्तन किया नहीं, यह सब तो कुछ करने का मौका ही नहीं था। आंखें थी नहीं, कहीं जा ही नहीं सकते थे, किसी से मिल ही नहीं सकते थे, पढ़ना लिखना कर ही नहीं सकते थे। पर ऐसी लगन लगी कि सारा जीवन उसमें प्रवाहित हो गया। उनके गुरु भाई हैं, संत हैं, अभी भी हैं, वे कहते हैं कि संन्यास लेने के लिए उनके गुरु ने आज्ञा दी पीछे और सिद्ध पुरुष ये प्रमाणित हो गए पहले। स्वामी जी महाराज के उम्र के बराबर के एक साधक हैं, वे कह रहे थे कि ऐसा लगता था कि न जाने कौन से गहरे चिंतन में स्वामी जी डूबे रहते थे और थोड़े ही दिन के बाद इनके चिंतन की दशा जो थी, सो हमारे देखते ही देखते एकदम प्रसन्नता में बदल गई और मुखमंडल बिल्कुल दीप्यमान हो गया, एकदम चमक निकलने लगी इनके चेहरे से और बड़ी प्रसन्नता और खूब शांति दिखाई देने लगी। वे कहते हैं कि मैं बार बार उनको पकड़ के पूछता था कि स्वामी जी महाराज, सच बताइए, आपको क्या मिल गया? आप ऐसे कैसे हो गए? आप में इतना परिवर्तन हो गया आदि। मैं आप भाई बहनों के सामने इस बात को इसलिए निवेदन कर रही हूं कि हृदय के विकास की बड़ी भारी आवश्यकता है। यह बात हमारी दृष्टि में आ जाए। श्री महाराज जी का हृदय बड़ा कोमल था। हमने सुना है कि बचपन में आम खाते समय कोई आम मुख में लगाए पहले और बहुत मीठा लगे तो एकदम याद आ जाए इनको कि भाई ये तो बड़ा मीठा है, यह तो अपने उस मित्र को खिलाएंगे, तो जल्दी से उसको झोली में डाल लें। यह किस बात का उदाहरण है? यह हृदयशीलता का उदाहरण है। सुख सामने आया तो स्वयं भोगा नहीं गया, प्रेमी मित्र को सुख देने में आनंद माना। ऐसी हृदयशीलता जिसमें है उसको अल्पकाल में ही सफलता मिल गई। एक बात संत ने बता दी तो उसका ऐसा गहरा स्टैंप लग गया कि सन्यासी बनाए गए पीछे और प्रभु की शरणागति उनके जीवन में सिद्ध हो गई पहले। तो मैं जो कहना चाहती हूं वह बात अब स्पष्ट हो गई होगी। आप भाई बहनों ने इस महत्व को पकड़ लिया होगा कि हमारे जीवन में साधना के पथ पर अगर हमारी प्रगति नहीं मालूम होती है, शिथिलता मालूम होती है, तो उसका कारण यह है कि हम लोगों ने हृदय के पक्ष को विकसित नहीं होने दिया। कहीं बड़प्पन का अभिमान, कहीं पढ़ाई लिखाई का अभिमान, कहीं जप तप का अभिमान, कहीं बड़े श्रीमान होने का अभिमान, और कहीं मोह की जड़ता, कहीं लोभ की जड़ता, इन सब विकारों को मिटाए बिना काम नहीं बनता है। जब हृदय सरस होता है, भाव पक्ष सबल होता है, तो संपूर्ण शक्ति साध्य से जुट जाती है। साधक को कुछ भी करना शेष नहीं रहता, फिर तो साध्य की ओर से अपने को हटाना चाहो तो हटा नहीं सकते। बड़ा जोरदार आकर्षण होता है भाई, मुझ पर तो उन्होंने अपनी कृपा करके ही अपनी विभूतियों का दर्शन कराया, नहीं तो मैंने हृदय में इतनी कठोरता, इतनी जड़ता और ईश्वर के प्रति इतना विद्रोह भर लिया था कि वे करुणा करके, संत स्वरूप होकर के मुझको संभालते नहीं तो मेरी जिंदगी मिट्टी मिल गई होती। अपनी तरफ से श्रद्धा भक्ति कुछ नहीं, सुख भोग की इतनी जबरदस्त कामना मुझ में थी कि जहां जहां सुख पर बाधा पड़े तो क्रोध से मैं बौखला जाऊं। किसने ऐसा विधान बनाया, किसने मुझको सृष्टि में भेजा, मेरे सामने से यह सुख का संसार मिट गया क्यों? कहां है सृष्टिकर्ता? उसको मेरे सामने आना चाहिए, मुझको उत्तर देना चाहिए। इस प्रकार विद्रोह से भरी थी मैं, परंतु वे करुणा सागर सचमुच सामने आए, सचमुच उन्होंने उत्तर दिया। मैंने क्रोध करके कहा कि आओ मुझको उत्तर दो, तो उन्होंने करुणा करके संत की वाणी में सब कुछ सुना दिया। मैं बिगड़ती रही, वे प्यार करते रहे। मैं नाराज होती रही और वे मेरी मदद करते रहे। यह कथा कहानी नहीं है, यह ग्रंथ के पढ़े हुए वाक्य नहीं है, यह मेरे जीवन के पृष्ठों पर लिखा हुआ है। इसलिए बहुत ध्यान दीजिए इस बात में, कि हृदय में प्रेम की सरसता की वृद्धि जो है वह आत्मीय संबंध के आधार पर बढ़ती है। हृदय का रस जो है वह उसी आधार पर आगे बढ़ता है, प्रवाहित होता है, शुद्ध होता है। उनमें कितना मधुर आकर्षण है, किस प्रकार से अपने ही बच्चों को खींच करके अपने में मिला लेते हैं, इस बात का उन्होंने मुझे प्रत्यक्ष करा दिया। उनकी कृपा का इतना खुले शब्दों में आपकी सेवा में निवेदन कर रही हूं कि उन्हीं की महिमा उन्हीं को सुना रही हूं। मैं किसी आदमी से नहीं कह रही हूं, उनकी कृपा है उन्हीं को सुना रही हूं। और उसका आभास मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि उस आकर्षण में कितनी पवित्रता है कि उसने आपको स्पर्श किया नहीं कि संसार खो गया, सब खत्म हो गया। इतनी जोरदार बात है, ये कल्पना नहीं है, अनुमान नहीं है, महिमावान की महिमा अपरंपार है। अगर कोई भाई या कोई बहन ज्ञान पंथ के साधक हैं और शरीरी जीवन की असंगता को, अविनाशी जीवन को, आनंदमय अस्तित्व को अनुभव करना चाहते हैं और उसकी ओर कदम बढ़ाने में कठिनाई हो रही है, तो वह अंतर्वासी कहीं चला नहीं गया, वह नित्य तत्व कहीं दूर नहीं गया, उसकी विभूतियां उसके लिए महंगी नहीं पड़ेंगी, वे अदृश्य रूप से आपकी मदद करते हैं और ज्ञान पंथ का साधक उनके ज्ञान स्वरूप से अभिन्न होकर आनंदित हो जाता है। आप शांत रहने का स्वभाव बनाइए, देखिए किस प्रकार स्वतः ही आंतरिक शक्तियों का विकास होता है। और अगर समाज के साथ संपर्क पड़े तो जहां तक हो सके वहां तक हृदय की मधुरता और प्रियता को, सद्व्यवहार को, मीठे वचन को बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए। हृदयशीलता की वृद्धि से ज्ञान पंथ में, वैराग्य में भी बड़ी दृढ़ता होती है और हृदयशीलता की वृद्धि से विश्वास पंथ में, प्रभु विश्वास में, समर्पण भाव में भी बड़ी सजीवता आती है और इसी से साधक के जीवन में सफलता मिलती है। बहुत ही आवश्यक बात है, इस बात पर हम सब भाई बहनों को ध्यान देना चाहिए और हृदयशीलता की वृद्धि होती जाएगी तो विचार के प्रकाश में जैसा हमें दिखाई देता है वैसा अनुसरण करने में हम सभी समर्थ हो जाएंगे। अब शांत होगा।